नमस्ते। आज का हमारा टॉपिक है विपासना मेडिटेशन। और इस विषय में चर्चा करने से पहले हम पहले कुछ 3 अनाउंसमेंट्स करना चाहते हैं। पहला तो हमारा पॉडकास्ट अब वीकली होने जा रहा है और हमारी कोशिश यही रहेगी कि हम इसको बाई वीकली कर दें। दूसरा, हम धन्यवाद करना चाहेंगे अपने स्पॉन्सर अम्ब्रेला का। अम्ब्रेला मार्ट रजौरी गार्डन न्यू दिल्ली से आप विमेन एथनिक वेयर लहंगा सूट साड़ीज और ब्यूटीफुल ड्रेसेस भी खरीद सकते हैं बेस्ट प्राइस पर। सो अम्ब्रेला मार्ट, थैंक यू सो मच फॉर स्पॉन्सरिंग दिस एपिसोड। तीसरा, आप सब लिसनर्स हमारे इस पॉडकास्ट करम प्रधान को इतना सारा प्यार दे रहे हैं। मैं आशा करूंगी कि आप सिर्फ एपिसोड्स डाउनलोड ना करें, साथ में सब्सक्राइब भी करें ताकि आपको नेक्स्ट एपिसोड का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और हमारी स्पिरिचुअल कम्युनिटी ज्वाइन करना ना भूलें। व्हाट्सएप का लिंक आप मेरी वेबसाइट kashishgambhir.com या फिर इंस्टाग्राम हैंडल कार्मिक बस KARMICBUZZ से भी ले सकते हैं। तो आइए अब हम चलते हैं हमारे आज के इस डिस्कशन में अमित अलहात के साथ, जो कि एक मराठी यूट्यूबर हैं। इनका फेसबुक पर भी मोटिवेशनल सोल्स करके पेज है जिस पर 2 लाख से ज़्यादा फॉलोअर्स हैं। और अमित विपासना मेडिटेशन प्रैक्टिशनर भी हैं, अपने विपासना एक्सपीरियंस से लोगों को विपासना के लिए गाइड करते हैं। तो आइए आज हम अमित के एक्सपीरियंस से सीखें विपासना के बारे में।
फिर वहीं से मुझे और एक दोस्त मिले, उनको कल्याण मित्र कह सकते हैं, कि जिन्होंने मुझे विपासना के बारे में बताया। और फिर उन्होंने कहा कि अमित तुम एक बार विपासना तो कर लो। फिर जब विपासना के लिए मैं जब पहुंचा, तब वहां पर का जो एक्सपीरियंस था फर्स्ट डे पे, वहां पर आपको किसी से बात नहीं की जाती। 10 दिन तक आप पूरी तरीके से साइलेंट होते हो, ना आपके साथ में मोबाइल फोन होता है, ना आप किसी से ऐसे आंख मिला के भी बात कर सकते हो, ना ही इशारों में आप बात कर सकते हो। पूरी तरीके से मौन। जब फर्स्ट डे जब आया तब मैं बोला, यार ये मैं कहाँ पर आ गया, किसकी बात सुन ली और मैं क्यों यहाँ पर आया। लेकिन जैसे ही गोयनका गुरु जी का जो प्रवचन है, अभी मैं आपको बता दूं कि गोयनका गुरु जी है वो 2013 में ही चल बसे, तो मैं 2017 में गया था, लगभग 4 सालों के बाद में। लेकिन उस दिन मेरे दिमाग में क्या क्या ख्याल आए ना, वो सारे ख्याल उन्होंने उस प्रवचन के दौरान बताया। उनका वीडियो चलता है।
कौन से सेंटर में गए थे विपासना के लिए?
मैं पुणे में ही एक सेंटर है मरकट,
अच्छा,
उस सेंटर में मैं गया था। तो उस सेंटर से फिर वो मेरी फर्स्ट अटेम्प्ट था वहां पे। फिर उसके बाद में मैं हमेशा प्रेफर करता हूँ कि इगतपुरी जाओ। ऐसा नेसेसरी नहीं कि वही सेंटर चाहिए, लेकिन आप किसी भी सेंटर में चले जाओ, सारे सेंटर में आपको ट्रेनिंग मतलब सेम टू सेम मिलती है। कहीं पर कुछ भी फर्क नहीं है, डे स्ट्रक्चर बिल्कुल वैसे ही रहता है सारे सेंटर में वैसे। लेकिन काफी सारे दोस्त वहां पर है और काफी ज्यादा अच्छे वाइब्स आते हैं, इसके लिए मैं इगतपुरी प्रेफर करता हूँ। तो फिर जब गुरु जी का प्रवचन शुरू हुआ, तब मुझे रियलाइज हुआ कि जो जो मैंने दिन भर में सोचा या मेरी अब तक की जर्नी में, लाइफ की पूरी जर्नी में जो कुछ भी मैंने सोचा है समझा है, वही सारे चीजें यही तो मुझे बता रहे थे। तो फिर उस टाइम पे मैंने मन ही मन उनको अपना गुरु मान लिया और सरेंडर कर दिया। और मेरा एक हमेशा लाइफ का एक वसूल रहा है, या फिर कहे रूल कहिए उसको, कि जब भी आप किसी को गुरु मान लेते हो तो मैं उनको सरेंडर करता हूँ। तो वो आदमी जो भी मुझसे कहे मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। तो फिर वही मैंने चीज, मतलब डिवोटी कहते हैं आप उसको, वो मतलब पूरी तरीके से सरेंडर हो जाता हूँ। और उससे मुझे काफी ज्यादा फायदा भी होता है। जब किसी को मैं सरेंडर हो जाता हूँ, कंप्लीटली उनका ही बन जाता हूँ, तब कहते हैं कि माँ सरस्वती किसी की जबान पर आ जाती है और जो आपको सुनना है आपके मुंह से वो सारी चीजें निकलना शुरू हो जाता है। फिर ऐसी जर्नी आगे चलती रही और फिर मैंने मेरे फ्रेंड सर्कल में भी देखा कि वो भी ज्यादा काफी स्ट्रेस में रहते, तो फिर मैंने उनको बताना शुरू किया। फिर बताते बताते उन्होंने कहा कि यार अमित तुम्हारे लाइफ में तो अमेजिंग चेंजेस हो गए, हमें भी बताना। फिर मैंने उनको विपसना के बारे में बताया, फिर उन लोगों ने भी किया। तो धीरे धीरे फिर जिस तरह से मैं बातें करने लगा, लोगों को और अच्छे लगने लगे। फिर लोग सेशंस के लिए, काउंसलिंग सेशन के लिए मेरे पास आने लगे। मैंने बिजनेस बोल के इसको शुरू नहीं किया था, लेकिन धीरे धीरे 2020 आते आते फिर मुझे ऐसे लगा कि इसको मैंने थोड़ा और एक्सेल करना चाहिए, मतलब थोड़ा और बढ़ाना चाहिए, लोगों की इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है। तो फिर मैंने इसको काउंसलिंग के तौर पर मैंने इसको बतौर शुरू किया, और फिर देखते ही देखते यूट्यूब पे लगभग 2.5 लाख के करीब करीब फॉलोअर्स बन गए मोटिवेशनल सोल्स पेज के ऊपर। एंड यूट्यूब पे अभी लगभग 44,000 सब्सक्राइबर हैं, जो दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे। तो काफी अच्छा, मतलब कह सकते कि विपश्यना से मेरी लाइफ में काफी ज्यादा चेंजेस मुझे तो देखने के लिए मिले।
अब ये विपासना से रिलेटेड ही मेडिटेशन का डालते हैं उसमें, और भी डालते हैं?
अभी अलग अलग तरह के, मतलब स्ट्रेस क्या होता है उसके साथ में एड्रेनल कॉर्टिसोल जो अपने हार्मोन्स होते हैं, वो हार्मोन्स किस तरह से आपके बॉडी के ऊपर काम करते हैं। आप अगर दिन भर एक ही चीज के नेगेटिव चीजों के बारे में अगर आप सोचते रहते हो तो वो आपकी बॉडी के ऊपर कैसे किस तरह से इम्पैक्ट करते हैं। विपस्ना के बाद में मैंने NLP भी सीखा है, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, तो उनके सारे वीडियो जो है उस चैनल पे चलते रहते हैं।
अमित, विपासना आपने जब करा था तो आपने पूरा 10 दिन कंप्लीट नहीं करा था उसको? करा
यस, पूरे 10 दिन कंप्लीट किए थे, थ्री
था?
डेज
अच्छा,
तक। यस, 3 डेज तक मुझे ऐसे लग रहा था कि घर चला जाऊं, मैं कहीं गलत जगह पे आ गया। लेकिन आपको बता दूं कि वहां पर एक बार जब आप एनरोल कर लेते हो तब तो आपकी छुटकारा नहीं है 10 दिनों तक, लगभग 11 दिन कह लीजिए, क्योंकि 11वें दिन वो आपको सुबह 6 बजे छोड़ते हैं, तो 11 दिन तक आपको वहीं पर रहना पड़ता है। क्योंकि बहुत सारे लोग नंबर लगाते हैं और सारा जो काम है वहां का एकदम फ्री रहता है, वहां पर किसी भी तरह से आपके पास से पैसे नहीं लिए जाते। जहाँ जैसे आपको घर में ट्रीटमेंट नहीं मिलती, वैसे ट्रीटमेंट आपको वहां पर मिलती है, एकदम VIP ट्रीटमेंट। 2 टाइम का आपको खाना मिलता है, मेडिटेशन के लिए आपको उठाया जाता है, आपको आपसे कोई बात भी नहीं करता। जैसे हम भगवान को ऐसे बत्ती, ये एक घंटी रहती है, जैसे जिस तरह से हम घंटी बजाते हैं ना, वैसे आपको उठाने के लिए वहां के जो धम्म सेवक होते हैं वो आते हैं, आपसे बात नहीं करते, वो घंटी बजा के आपको उठाते हैं, फिर आप उठते हो और फिर मेडिटेशन हॉल में आप चले जाते हो।
तो आपसे 10 दिनों के लिए फोन भी ले लेते होंगे ना वो?
यस, फोन तो पहले ही दिन जमा कर लेते, फोन,
ठीक है,
उसके बाद में लैपटॉप, पढ़ने की सारी चीजें।
सो यू आर नॉट अलाउड टू रीड बुक्स ऑल्सो?
यस, वी आर नॉट अलाउड।
ठीक है, तो अपना अगर हम फर्स्ट डे से बात करें तो अपनी फर्स्ट डे की आप रूटीन बताओ कि क्या हुआ था, फर्स्ट डे में क्या रूटीन रही थी?
यस, उसको 0 डे कहते हैं। तो 0 डे में आपको वहां पर 5 बजे के पहले आपको वहां पर जाना है, फिर आपका इंटरव्यू होता है, इन शॉर्ट कि आप विपश्यना करना चाहते हो। बहुत सारे पैनलिस्ट बैठे हुए होते हैं और वो आपको पूछते हैं सवाल बार बार कि 10 दिन रह पाओगे, 10 दिन रह पाओगे, 10 दिन रुकोगे, तो आप कहते हो हाँ, उसी के लिए तो आया हूँ, 10 दिन रुकेंगे, 10 दिन। तो ये ना आपके पास से एक कंफर्मेशन लिया जाता है 3-4 बार, और फिर आपको अंदर लिया जाता है। तो आपका ऑनलाइन जो आपने फॉर्म भरा है, लगभग 2 महीने पहले आपको फॉर्म भरना पड़ता है, फिर आपका कंफर्मेशन आता है, कंफर्मेशन आने के बाद में फिर आपका सीट रिजर्व हो जाता है। फिर आपको कुछ समस्या है लाइफ के अंदर, या फिर स्ट्रेस में हो, या फिर किसी
और
तरह
आप
की आप
इसके लिए
दवाई
कुछ
ले रहे
पे
हो,
करते हैं विपासना के लिए? कुछ
बिल्कुल भी
पेमेंट
नहीं, बिल्कुल
नहीं
भी
है?
नहीं,
ठीक
बिल्कुल
है।
भी नहीं, बिल्कुल स्टार्ट से लेकर एंड तक पूरी सारा का सारा काम एकदम फ्री है।
ठीक है,
तो जब आप वहां पर जाते हो तब ये 3-4 बार आपको कंफर्म किया जाता है कि आप बैठोगे ना 10 दिन। फिर जब आप जैसे ही बैठ जाते हो, फिर 0 डे पे आपको 5 बजे उनका ब्रेक होता है, 5 से 6 बजे तक का। फिर 6 बजे आपको ऑफिस से बुलाया जाता है, और 6 बजे के बाद में आपको कहा जाता है कि इसके बाद में आप बात नहीं करोगे वो अगले 10 दिनों तक। फिर शाम के 6 बजे जो आपका मौन शुरू होता है वो लगभग 10वें दिन तक आपका कंटिन्यू रहता है। फिर उसके अंदर आप किसी से बात नहीं कर सकते, ऐसे आंखों से इशारा भी नहीं कर सकते, ऐसे हाथों से भी इशारा नहीं कर सकते, बस आप अपने में ही रहते हो। आपके बाजू में पूरी दुनिया है लेकिन उस दुनिया से आप बिल्कुल ही कट हो, और
अच्छा,
आपका फोन, ये तो सारी चीजें आपकी ले ली होती है, तो आप किसी से कुछ कह भी नहीं सकते। तो नेक्स्ट डे डे 1 होता है, तो डे 1 पे 4 बजे वहां पर अलार्म क्लॉक बजता है, 4 बजे आपको धम्म से वो उठाने के लिए आते हैं। फिर 4:30 से आपका मेडिटेशन शुरू होता है, तो वो लगभग 6:30 बजे तक चलता है। फिर 6:30 बजे आपको ब्रेक मिलता है ब्रेकफास्ट के लिए, फिर आपका जो ब्रेकफास्ट होता है वो 7 बजे तक, आधे घंटे का आपको ब्रेक होता है। फिर 7 बजे से लेकर 8 बजे तक आप नहाना वगैरह ये सब कुछ करके वापिस आपको मेडिटेशन के लिए जाना है। तो 8 से 9 ग्रुप सिटिंग होती है दिन में, ऐसे 3 ग्रुप सिटिंग होती है, तो सुबह की एक ग्रुप सिटिंग होती है 8 से 9 की, जो कि कंपल्सरी है। फिर 9 बजे के बाद में वापस से 11 बजे तक आपका मेडिटेशन चलता है, 11 बजे आपको लंच ब्रेक मिलता है, तो वो लगभग 12 बजे तक होता है, 11 से 12। फिर 12 से 1 आपको रेस्ट मिलता है कि आप जाकर आराम कर सकते हो। अगर आपके कुछ सवाल रहेंगे तो आप गुरुजी से जाकर उसकी चर्चा भी कर सकते हो, आधे घंटे का आपके पास समय रहता है।
बोले
12 से 7 नहीं, गुरुजी से बस आप बात कर सकते हो वहां पर, बाकी किसी से आप
जस्ट
बात नहीं कर सकते, बस
किडिंग।
जो भी टीचर है उनसे ही आप बात कर सकते हो। और फिर वापस से 1 बजे मेडिटेशन शुरू हो जाता है, वो लगभग शाम के 5 बजे तक चलता है। फिर 5 बजे आपको ब्रेक मिलता है स्नैक्स के लिए, तो स्नैक्स में जो पुराने साधक हैं उनको बस नींबू पानी मिलता है, और जो नए साधक हैं तो उनके लिए छोटा सा स्नैक्स रहता है, जैसे हम भेल कहते हैं,
नहीं,
वो
ये
भेल।
ऐसा क्यों है? मतलब पुराने साधकों के, अब तुम पुराने हो गए, तुम्हें सिर्फ नींबू पानी मिलेगा?
नहीं, उसके पीछे का एक लॉजिक है, उसके पीछे का रीजन भी है। अगर आप फर्स्ट टाइम गए हो तो ये बात तो सही है कि आप इसको जानने के लिए आए हो कि क्या होता है विपस्सना, तो आपके अंदर बड़ी मतलब कुतूहल रहता है कि क्या है, क्या इसके अंदर इतने लोग क्यों आते हैं। अभी क्या है कि इंस्टाग्राम और यूट्यूब के ऊपर काफी सारे वीडियोज आते हैं, तो लोग, मैंने देखा है लिटरली कि जब मैंने उनसे बात करता तो पूछता हूँ, मतलब 11 डे पे जब हमारी मुलाकात होती है तब मैं जब पूछता हूँ तब कहते कि मेरे दोस्त ने मुझे कहा था, मैंने इंस्टाग्राम पे रील्स देखी थी, यूट्यूब पे देखी थी कि 10 दिन लोग चुपचाप रहते, तो मैं भी जस्ट डिस्कवर करने के लिए आया था कि लोग कैसे चुपचाप रहते। तो इसका मतलब है कि आप सीरियस नहीं हो अपने खुद को लेकर, आपको किसी को दिखाना है इसके लिए आप वहां पर आए हो, और फिर वो आप 10 दिन निकाल लेते हो। लेकिन अब जब नेक्स्ट टाइम आप वापिस से दूसरी बार जाते हो तो इसका मतलब है कि आप सीरियस हो, आप यहाँ पर आए हो, तो आपको अपने मन को बहुत अच्छे तरीके से जानना है, अपनी लाइफ को आपको अच्छे तरीके से जानना है। तो फिर उन साधुओं के लिए थोड़ा सा जो नियम होते हैं वो थोड़े कड़े किए जाते हैं, मतलब थोड़ा सा सख्त होता है उनके लिए। पुराने साधुओं के लिए 5 नियम होते हैं, तो जो पुराने हैं उनके लिए 8, नए के लिए 5 और पुरानों के लिए 8 नियम होते हैं।
ये तीन कौन से हैं जिनका डिफरेंस है?
तीन के अंदर आपको पहले 5 तो बता दो। पहले 5 के अंदर होता है कि झूठ नहीं बोलना, उसके बाद में चोरी नहीं करना, हत्या नहीं करना, व्यभिचार नहीं करना, और नशा पानी नहीं करना, ये 5 हो गए। उसके बाद में छठा जो होता है वो होता है ब्रह्मचर्य का पालन करना। उसके बाद में जो उच्च श्रेणी होती है, मतलब मुलायम गादी गादी तक की है, जैसे राजा महाराजा यूज कर देते हैं, तो उस तरह से आपको यूज नहीं करना है। और केश कंघी, मतलब खुद को संवरने में टाइम नहीं लगाना है आपको। तो क्या होता है कि मतलब जब आप ऐसा मेडिटेशन वगैरह जब करते हो तब आपका जो ध्यान है वो आपके मन के ऊपर होना चाहिए, ना कि ये बाकी के चीजों के ऊपर, क्योंकि
फिर
आप
तो
यहाँ
वहां
पर
पे मिरर्स भी नहीं होंगे फिर तो?
नहीं है, मिरर्स वगैरह सब कुछ है।
अच्छा,
वो सब हर एक रूम में मिरर है, और सबसे प्यारी बात यह है कि आप सभी को सेपरेट रूम्स अलोकेट किए जाते हैं, जो पुराने हैं उनके लिए तो सेपरेट होता है, और जो नए हैं उनके लिए शायद से कंबाइन प्रोवाइड करते हैं।
आपने 7th वाला क्या बोल रहे थे आप? राजाओं के जैसे
सेवेंथ,
गद्दी क्या बोल
हाँ,
रहे थे?
उच्च श्रेणी मतलब जैसे हम मुलायम तकिए पे सोते हैं, गद्दे पे, बड़े बड़े गद्दे जैसे एकदम मुलायम होते हैं,
मतलब
वो
बहुत कंफर्टेबल ना हो इसलिए।
हाँ बहुत कंफर्टेबल ना हो, वहां पर आपको सब कुछ दिया जाता है, इवन पुराने साधकों को भी गद्दा वगैरह दिया जाता है, बस यही कि बहुत ही कंफर्टेबल नहीं होता, जैसे हमारे स्प्रिंग मैट्रेस आते हैं आजकल, उस तरह के नहीं होते।
किसी ने ना मुझसे पूछा कि दुनिया में इतना ज्यादा प्रॉब्लम्स क्यों है, इतना ज्यादा ग्रीफ क्यों है। उसका बेसिकली आंसर यही है कि
यस
अगर इंसान बहुत ज्यादा कंफर्टेबल हो जाएगा ना, और वो खुश रहेगा पूरा टाइम, तो उसके मन में ख्याल ही नहीं आएगा कि वो इस दुनिया से बाहर भी निकले और जन्म मरण के चाल से बाहर निकले। पर जब इंसान
अच्छा
बहुत अनकंफर्टेबल होता है और बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं उसकी लाइफ में, तब वो एक क्वेश्चन करता है परमात्मा से कि मैं कौन हूँ। और फिर उसके अंदर एक ख्याल आता है कि मुझे जन्म और मृत्यु के इस चक्कर से बाहर निकलना है। सो दैट इज वाई दिस वर्ल्ड इज दैट ऑफ ड्यूअलिटी। इसलिए यहाँ पे गम भी और खुशी भी है, और वो हमेशा ऐसे ही रहेगा, कभी भी पूरे तरीके से स्वर्ग नहीं बनेगा ये। आपकी
बिल्कुल बिल्कुल
बात से
बिल्कुल
मुझे
सही
ये
है।
ध्यान आया, इन्होंने इसके प्रिंसिपल्स में जो आपने साथ बताए हैं उसमें ये चीज डाली हुई है, तो इसके बहुत डीपर मीनिंग्स हैं चीजों के ना, तो हमें वो डीपर
बिल्कुल
मीनिंग्स भी थोड़े समझने चाहिए कि वो क्यों है। आप क्वेश्चन तो पूछ नहीं सकते वहां पे, तो क्या समझोगे?
नहीं,
एनीवे,
आप
मैंने
क्वेश्चन
आपसे,
पूछ सकते हो कि
हाँ वो
सॉरी,
उनसे गुरुजी से पूछ
मेरा कहना था कि
सकते
आप
हैं।
क्वेश्चन पूछ सकते हो कि जो आपको विपस्सना करते समय, मतलब मेडिटेशन करते समय जो भी आपको डिफिकल्टीज आ रही है उसके रिगार्डिंग आप क्वेश्चन पूछ सकते हो,
ओके
लेकिन आप ये नहीं पूछ सकते कि आज इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का फाइनल मैच था तो कौन जीता, मतलब बाहर के सवाल नहीं पूछिए, आप वहां
सब
पर
लोग ये
हो तो
नोट
वहां पर
कर
आपको क्या
लीजिए, मैच के
डिफिकल्टी
टाइम पर नहीं जाना।
है। अच्छा आपको बता दो, ये जब इंडिया का वर्ल्ड कप चल रहा था ना, तो उस टाइम पे मैं विपसना के लिए गया था, तो वहां पर भी मैंने ये चीज नोटिस की कि कोई कोई लोग आए थे, उनको लगा था कि शायद कुछ ना कुछ तो जुगाड़ हो जाएगा, लेकिन मैंने ना उनके अंदर वो हलन चलन देखी कि मैच चल रहा है और कहीं ना कहीं से ना वो स्कोर जाने की कोशिश कर रहे कि यार कहीं से कुछ तो क्लू लगे कि आए। और जब 11th day आया तब सबसे पहले उनके मुंह में यही सवाल था कि जीता कौन, ऑस्ट्रेलिया फिर इंडिया।
नहीं,
तो
मैं तो
ये
ये सोच रही हूँ कि 1 मिनट, आपने अगर 11th day पर छूटते सर ये पूछा, मतलब आपके इतने सारे दिन इस ध्यान में बीते कि स्कोर क्या है, तो ध्यान परमात्मा की तरफ तो लगा ही नहीं ना, ध्यान तो
नहीं
स्कोर
लगाया
की
था,
तरफ
तो
ही
वही
रहा,
तो,
फायदा क्या हुआ उसका
वही
फिर।
वही हाँ, तो वही मतलब मैं मेरी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं और लोगों की बात कर रहा था कि जिस तरह जब उनका मौन जब टूट गया, मतलब उनको बोलने के लिए अलाउ किया गया, तब उस टाइम पे उनका यही सवाल था कि इंडिया का जो फाइनल मैच हुआ उसके अंदर जीता कौन। तो यही होता है कि आपका जो मन होता है ना वो आपको हमेशा ना घुमाता रहता है, मतलब एक बंदर की तरह आपका मन होता है। अभी आप कुछ सोच रहे हो, उसके कनेक्टिंग आप दूसरा कुछ तो सोचोगे, उसके कनेक्टिंग आप तीसरा कुछ तो सोचोगे। जैसे एक जंगली बंदर है तो एक पेड़ से दूसरे पेड़ पे छलांग लगाते ही रहेगा, लगाते ही रहेगा। अभी जब हम मेडिटेशन के लिए जाते हैं 10 दिन के लिए, तब हम उस जंगली बंदर को ना कंट्रोल में लाते हैं, और उस जंगली बंदर को कंट्रोल करना इतना आसान नहीं है, बहुत मशक्कत करनी पड़ती है। वहां पर जब आप बैठे हो 3 दिनों तक, बस आपको सांसों के ऊपर फोकस करना होता है,
अच्छा
नहीं
चलो,
होता
हम
सांसों के ऊपर फोकस।
मैं ना आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछने वाली हूँ, वन
यस
आफ्टर द अदर, ठीक है? और आपने मेरे को उन सारे क्वेश्चंस के जवाब देने हैं। अच्छा चलो, अब मैं आपसे जो आपने अभी जो चीज़ें एक्सप्लेन करी हैं तो उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछ रही हूँ। एक्चुअली मैं मुझे आपकी बात सुनकर वो वर्ल्ड कप वाली बहुत ज़्यादा हंसी आ रही है, अभी तक उसी मोड में हूँ मैं। तो
अच्छा
बहुत कमाल की बात है ये, क्योंकि मेडिटेशन का मकसद हो नहीं पाया वहां पे, तो दैट्स अ बिट फनी।
हाँ
और मेरे माइंड में कुछ जोक्स भी चलते रहते हैं कॉन्टिन्यूसली बाय गॉड्स ग्रेस, तो खुश रहती हूँ मैं।
ओके
ओके सो सबसे पहला तो कि आपने जैसे बोला कि ये, मैं इसलिए क्वेश्चन पूछ रही हूँ पहली बात तो, क्योंकि हम जब ये बात कर रहे थे तो मुझे लगता है कि जो लिसनर्स हैं उनके भी माइंड में ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है? तो सबके बिहाफ पर मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रही हूँ। अब आपने कहा कि बिल्कुल भी आप पूछ नहीं सकते कुछ, मतलब बोल नहीं सकते एक्सेप्ट गुरुजी है, ठीक है? आपने अदरवाइज नहीं बोला, पर अगर किसी को कुछ इमरजेंसी है, कुछ बात करनी है और उस टाइम पर आपका वो टाइम चल रहा है, देन उसके लिए क्या कोई उन्होंने साइन बनाया हुआ है कि आप, या फिर कोई पर्सन है डेडिकेटेड के जिसके पास आप आ सकते हो और बात कर सकते हैं, क्या चीज़ है उसके लिए?
अगर आपके मतलब विपसना के रिलेटेड जो भी कुछ सवाल है, अगर आप उस टाइम पे गुरुजी से नहीं बात कर सकते और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो वहां पर धम्म सेवक है, जिनको वॉलंटियर के बे कहते हैं, धम्म सेवक कहते हैं, तो उनके पास आप अपना मैसेज जो है वो दे सकते हो। फिर वो जो मैसेज है वो गुरुजी तक पहुंचाते हैं, फिर गुरुजी टाइम देते हैं आपको, और फिर आप उनसे गुरुजी से बात कर सकते हो। मतलब ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल ही नहीं बात कर सकते, आप बात कर सकते हो बस दो लोगों से, आइदर धम्म सेवक या फिर गुरुजी, लेकिन सबसे जो प्रायोरिटी पर्सन है, प्राइमरी, वो है गुरुजी, एंड सेकेंडरी है धम्म सेवक।
ओके फाइन। धम्म सेवक इज बेसिकली काइंड ऑफ अ सेवादार, अ वॉलंटियर हु
करेक्ट
इज
करेक्ट अ
देयर, राइट?
वॉलंटियर।
राइट,
यस
गॉट इट, ठीक है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपने जो ग्रुप सिटिंग की बात बोली थी, व्हाट इज ग्रुप सिटिंग?
तो ग्रुप सिटिंग के अंदर टाइम होते हैं, सुबह 8 से 9 होता है, दोपहर में 2:30 से 3:30 होता है, और शाम में 6 से 7 होता है। तो ये 3 ग्रुप सिटिंग जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसके अंदर बाकी के समय आप अपने रेसिडेंशियल अपार्टमेंट में आप मेडिटेशन कर सकते हो, या फिर धम्म हॉल में आप मेडिटेशन करते हो, या फिर एक और एक है जिसको शून्यागार या फिर 0 सेल्स कहा जाता है। तो वो सेल्स जो है वो आपको अलोकेट किए जाते हैं, जैसे गुफा रहती है ना एक छोटी सी, उसके अंदर जाकर आप मेडिटेशन कर सकते हो। तो
ओके
ये मेडिटेशन आप दिन भर में कहीं पर भी इन तीन जगह पे कर सकते हो। बस ये जो मैंने आपको तीन ग्रुप सिटिंग जो बताया, उस समय आप सभी लोगों को मेडिटेशन हॉल में आना है। तो
ओके
मेडिटेशन हॉल में आके आपको इकट्ठा ग्रुप सिटिंग करनी है, तो उसको
ओके
ग्रुप
ओके
मेडिटेशन कहा जाता है।
सो अदरवाइज सेपरेट मेडिटेशन कर रहे हैं और ग्रुप सिटिंग में खट्टे मेडिटेशन कर रहे हैं, दैट इज द डिफरेंस.
करेक्ट करेक्ट करेक्ट।
गॉट इट. ठीक है. अच्छा, जैसे कि आपको जब बोला गया, जब आप सिंगल आप मेडिटेशन कर रहे हो, कोई भी नहीं है, आप सोलो मेडिटेशन है आपका, ठीक है, तो वो कहाँ पे करना होता है? वो अपने रूम में करना होता है मेडिटेशन वो?
बेसिकली वहां पर धम्मो हॉल, उसको जो मेडिटेशन हॉल कहा जाता है उसको धम्मो हॉल कहा जाता है। तो वहां पर आइडियली आपने बैठकर करना चाहिए, जब अगर आप नए हो, और अगर आप पुराने हो तो आपके लिए फिर शून्यागार आपको अलॉट किया जाता है जीरो से, कि वहां पर जाकर आप मेडिटेशन कर सकते हो खुद का।
तो
तो
उसका कुछ,
इंस्ट्रक्शन तो आपको
अच्छा, तो उसका कुछ वो भी है, मतलब कि आर दे कीपिंग अ ट्रैक, कि आपने किसी को भेज दिया कि ठीक है वहां पर जाके मेडिटेशन कर लो, वहां पे बंदा जाके सोकर आ गया?
अच्छा, तो ये बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। जो नए साधक होते हैं तो उनके साथ में ये हमेशा होता है, लेकिन उनको थोड़ा सा स्ट्रिक्ट रखा जाता है वहां पर, क्योंकि वो वहां पर छुट्टी मनाने के लिए नहीं आए, पिकनिक पे नहीं आए, वो वहां पर मेडिटेशन करने के लिए आए। जो धम्म सेवक होते हैं उनका काम होता है कि जो भी नया साधक है उनके ऊपर वो वॉच रखे कि ये मेडिटेशन तो कर रहा है ना दिन भर में, अगर नहीं कर रहा है तो फिर उसको फिर गुरुजी से उनकी एक बार वापस से मुलाकात की करवाई दी जाती है कि क्या आपको चैलेंजेस आ रहे हैं, अगर प्रॉब्लम आ रहे तो आप बात नहीं कर सकते तो ठीक है हमको शेयर कीजिएगा। मतलब गुरुजी उनको आकर पूछते और फिर उनको वापस से गाइड किया जाता है। मतलब वहां पर जाने के बाद आपको ऐसे ही अकेला नहीं छोड़ा जाता। मैंने कहा ना कि VIP ट्रीटमेंट आपको दी जाती है, आपके ऊपर बहुत बारीकी से, और आपको ये सिखाया जाता है कि आप यहाँ पर आए तो मेडिटेशन ही करो, उसके अलावा आप कुछ भी मत करो, आपके रहने के खाने का सबका आपका बंदोबस्त हो जाएगा, इवन आपके घर वालों का भी। अगर मान लीजिए वहां पर एक ना इमरजेंसी नंबर होता है जो आप अपने घर वालों के साथ में शेयर कर सकते हो, तो अगर आपके घर वालों का कॉल आता है और अगर आपके घर में बहुत ही ज्यादा कुछ इमरजेंसी हो गई ना, तो आपको बुलाया जाता है और आपको कहा जाता है कि आप यहाँ से, अपने घर वाले का आपको कॉल आया था तो आपको जाना पड़ेगा। लेकिन अगर घर वाले आपको बस यही कॉल करके पूछ रहे कि नहीं हमारा बेटा आया है वहां पर तो उसका मेडिटेशन किस तरह से चल रहा है, अच्छा तो चल रहा है ना, तो बस ये ऐसे सवाल रहेंगे तो वो आप तक नहीं आएंगे, वो वहीं पर जो मैनेजमेंट होती है वहां की वो अपने आप उनको आंसर कर देंगे। तो
गॉट इट. तो ऐसे वहां पे कैमरेज लगे हुए हैं आपको ट्रैक करने के लिए कि आप कर रहे हैं
यस, नहीं
मेडिटेशन?
नहीं अभी ये इंडिविजुअल हर एक के लिए कैमराज नहीं है, लेकिन हाँ कुछ सिक्योरिटी रीजंस के लिए कैमरा है वहां पर, लेकिन हर एक को तो ट्रैक करना बहुत ही मुश्किल है, उसके लिए जो
राइट.
वॉलेंटियर्स है वो है आपके ऊपर ध्यान रखते हैं वो।
ठीक है. अच्छा, एक बात बताइए कि क्या ऐसे लोग आते हैं वहां पे जो कि अपने घर से परेशान होकर या घर में कोई लड़ाई हो गई तो चलो विपासना के लिए चले जाते हैं, थोड़ा 10 दिन का ब्रेक मिल जाएगा, ऐसे भी लोग आते हैं?
आइडियली मैंने अभी तक जो वहां पर आने वाले जो लोग देखे ना, वो अपनी लाइफ को लेकर बहुत ज्यादा सीरियस है, उनको स्पिरिचुअलिटी बहुत अच्छी तरीके से समझ नहीं है कि मैं अगर इस जन्म में आया हूँ तो मेरा कुछ ना कुछ तो मकसद है, और वो मकसद क्या है वो जानने के लिए वो पेशा में आते हैं। तो अगर वहां पर अगर कोई अपने घर से लड़ाई झगड़ा करके अगर वहां पर आएगा ना, तो वहां पर एक दिन भी नहीं रुक सकता, उसके लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, वो रुक ही नहीं सकता। और आपको मतलब आज आपने डिसाइड कर लिया और आप नेक्स्ट डे पे विपसना के लिए चले गए, ऐसा तो नहीं होता। आपको 2 महीने पहले आपका रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, फिर जाकर आपका कंफर्मेशन आता है और फिर जाकर आप वहां पर जाते हो।
ओके